नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए नई तारीख जारी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब मतदाता सूची का मसौदा 6 जनवरी को जारी होगा। इससे जुड़े दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगी। प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च को होगा। राज्य में सभी गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि काशी और तमिलनाडु के बीच का संबंध ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि सभ्यतागत और आध्यात्मिक भी है, जिसने हजारों वर्षों से भारत को एकजुट रखा। कल रामेश्वरम में चौथे काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि ये भारत की साझा विरासत का प्रतीक है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना प्रगाढ़ होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि काशी तमिल संगमम महाकवि सुब्रमण्यम भारती के एकजुट, एकीकृत और आत्मविश्वासी भारत के दृष्टिकोण को प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि भारती का ये सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और सुविचारित पहलों से साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बातचीत की। इसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक बदलाव, विकसित भारत का एजेंडा विषय पर चर्चा हुई। विकसित भारत को समग्र राष्ट्र की आकांक्षा बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सरकार की नीतियों में परिलक्षित होता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद ने वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत जीराम जी विधेयक पारित किया है। इसके माध्यम से मनरेगा योजना की कमियों को दूर किया जाएगा। श्री चौहान ने भोपाल में कहा कि इस मिशन में बेरोजगारी भत्ते के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल है और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल से जोड़ा गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना, मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, अदालती मामलों में कमी लाना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार व्यापार सुगमता और बेहतर जीवन यापन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये विधेयक 5 जनवरी से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा। रेलवे ने कल राजस्थान के कोटा से मध्य प्रदेश के नागदा के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का कल परीक्षण किया। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ट्रायल रन के दौरान रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तेज गति के बावजूद रेल के अंदर रखे पानी के ग्लास स्थिर रहे। शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की युवा लेखक मार्गदर्शन स्कीम पीएम युवा के तीसरे चरण की प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की 43 कृतियों का चयन किया गया है। चयनित कृतियों को 6 महीने के भीतर पुस्तक का रूप दिया जाएगा। प्रत्येक चयनित लेखक को प्रतिमाह 50,000 रूपये की छात्रवृत्ति और प्रकाशित पुस्तक पर 10% की आजीवन रॉयल्टी भी प्राप्त होगी। पुस्तकों का पहला सेट अगले वर्ष प्रकाशित किया जाएगा। पीएम युवा स्कीम का उद्देश्य देश के साहित्य और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश विदेश के लेखकों की नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना है। नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी में नए साल के जश्न पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नागरिक बिना किसी परेशानी के नववर्ष का स्वागत कर सकें, इसके लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। नववर्ष के अवसर पर कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और इनके आसपास के क्षेत्रों में आज शाम 7 बजे से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यातायात पुलिस की अतिरिक्त आयुक्त मोनिका भारद्वाज ने बताया कि इन क्षेत्रों में भारी भीड़ और समारोह होने के कारण केवल वैध पास वाले वाहनों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जा रहे हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनका 80 वर्ष की उम्र में कल ढाका में निधन हो गया था। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने विश्व बिल्ड्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। दोहा में चल रहे सेमीफाइनल में उज्बेक खिलाड़ी नादरबेक अब्दुसत्तारोव से हारकर उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।